ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தசஸ்லோகி பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ விஷ்ணு வல்லபானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஸ்ரீ சங்கர் பகவத் பாத விரச்சிதா தசஸ்லோகி. ந பூமிர்ன தோயம் ந தேஜோ ந வாயுர் ந கம் நேந்திரியம் வா ந தேஷாம் சமூஹ அனைகாந்திகத்வாத் சுஷுப்தே கசித்தஸ் ததேகோ வசிஷ்டஃ சிவஃ கேவலோ. நவர்ணானவர்ணாஶ்ரமாசாரதர்மா நமேதாரணாத்யானயோகாத் அநாத்மாஶ்ரயாஹம் மமாத்யாஸஹானாத் ததேகோ வசிஷ்ட சிவஃ கேவலோஹம். ந மாதா பிதா வா ந தேவா ந லோகா ந வேதா ந யஜ்ஞா ந தீர்த்தம் ப்ருவந்தி சுஷுப்தோ நிரஸ்தாதி சூன்யாத்மகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்டஃ சிவஃ கேவலோஹம். ந சாங்க்யம் ந சைவம் ந தத் பாஞ்சராத்ரம் ந ஜைனம் ந மீமாம்சகாதேர் மதம் வா. விசிஷ்டானுபூத்யா விசுத்தாத்மகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்ட சிவஃ கேவலோஹம். நூர்வம் நாதோ நாந்தர்ணியம் ந மதியம் நீரியம் ந பூர்வாபராதி வியத்வியாபகத்வாதண்டைகரூபஸ்ததேகோ வசிஷ்ட சிவஃ ந சுக்லம் ந க்ரிஷ்ணம் ந ரக்தம் ந பீனம் ந குப்ஜம் ந பீதம் ந ஹ்ரஸ்வம் ந தீர்கம் காரகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்ட சிவஃ கேவலோஹம். ந சாஸ்தா ந சாஸ்த்ரம் ந சிஷ்யோ ந சிக்ஷா ந சத்வம் ந சாஹம் ந சாயம் ப்ரபஞ்ச ஸ்வரூபாவபோதோ விகல்பாஸ்ரகேவலோஹம். ந ஜாக்ரன் ந மே ஸ்வப்ன கோ வா சுஷுப்திர் ந விஸ்வோ ந வா தேஜஸ அவித்யாத்மகத்வாத் த்ரயாணாம் துரியஸ் ததேகோ வசிஷ்ட சிவஃ கேவலோஹம். அபி வ்யாபகத்வாத் விதத்வா ப்ரயோகாத் ஸ்வதஃ சித்த பாவாத் அனன்யாஶ்ரயத்வாத் ஜகத்தோச்சமேதத் சமஸ்தம் ததன்யத் ததேகோ
சிவஃ கேவலோஹம்.
ந சைகம் ததன்யத் த்விதீயம் குதஃ ஸ்யாத் ந வா கேவலத்வம் ந சாகேவலத்வம். ந சூன்யம் ந சாஶூன்யம் அத்வைதகத்வாத் கதம் ஸர்வ வேதாந்த சித்தம் கதம் ஸர்வ வேதாந்த சித்தம் ப்ரவீமி. தச ஸ்லோகீ கே மாத்யம் ஸே ஹம் லோக் அப்னே ஸ்வரூப் கா சிந்தன் கர் ரஹே ஹே. हम लोगों ने अपने को क्या मान रखा है? कोई पूछे आपने अपने को क्या मान रखा है? जो मन में रखा है वही मान रखा है। मन और मान में क्या अंतर है? मानो तो मानो, नहीं मानो तो न मानो। मान न मान मैं तेरा, ऐसा है क्या? दुनिया में आने के बाद सबने अपने को क्या मान रखा है? हम थोड़े महात्माओं की बात बताते हैं आपको। कुंभ मेला चल रहा है अभी, कोई महात्मा किसी महात्मा को मिलते बोलते, अरे आप मंडलेश्वर नहीं बने? एक महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था भगवान ने की है, वेद का प्रमाण है कि वर्ण की व्यवस्था मानो, आश्रम की व्यवस्था मानो, इससे परमात्मा की प्राप्ति करने में एक सहायता मिलती है, साधन माना गया। नहीं, टिकट जब आरक्षित हो, सीट रिजर्व हो, तो यात्रा करने में आनंद आता है। और ये सोचो कि स्टेशन चलते हैं, जो भी चलती हुई ट्रेन मिल जाएगी, चल पड़ेंगे तो कभी यात्रा पूरी होगी? अनारक्षित यात्रा और आरक्षित यात्रा में कितना अंतर है। जब हम वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हैं तो ये हो गया आरक्षण, और बिना वर्ण आश्रम की व्यवस्था कि जब हम चलने की कोशिश करते हैं, यह है अनारक्षित यात्रा। तो उन्होंने कहा कि यदि वेद में या भगवान ने ऐसा कहीं लिखा हो कि जो महामंडलेश्वर नहीं बनेगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो उसने कहा मैं जरूर मंडलेश्वर बनने का प्रयास करूंगा। और यदि ये प्रमाण नहीं है तो ये तो केवल समाज की व्यवस्था चलाने के लिए है, और समाज की व्यवस्था चलाना हमारा कोई ठेका नहीं है। जिसको चलाना है वो चलाओ, हमें नहीं बनना। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है। यदि वैदिक प्रमाण है, वेद में ऐसा कहीं लिखा हो कि जो मंडलेश्वर नहीं बनेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो मैं जरूर बनूंगा। एक मंडलेश्वर से किसी ने पूछा, महाराज ये मंडलेश्वर होते क्या है? आप लोगों को मालूम है ना? नहीं मालूम है? ज्यादा जान के करोगे कि आपको बनना तो है नहीं, तो जान के करोगे क्या? बस इतना समझ लीजिए, मंडली नाम ईश्वर मंडलीश्वर शब्द होना चाहिए, मंडलीश्वर, मंडली का स्वामी। अब नाम पड़ गया मंडलेश्वर। मंडल मतलब एक क्षेत्र, एरिया, जिसको जिला आदि भी कह सकते हैं। जैसे आजकल हम बोलते हैं डीएम, डीएम का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये जो है वास्तव में वही मंडलेश्वर है, उस जिला में उसकी पूरी चलेगी, उसके बिना कोई काम नहीं होगा। तो एरिया वाइज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसा जैसा प्रसंग आएगा हम आप लोगों को थोड़े बता देंगे। ये कुंभ मेला जो होता है ना, हमारे महात्माओं की क्या पद्धति है, इसलिए सब करना पड़ता है। तो मंडल के ईश्वर होने से अब नाम पड़ गया मंडलेश्वर। तो किसी मंडलेश्वर से पूछा कि ये मंडलेश्वर का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने विनोद में मजाक में कहा कि 10 भिखारियों का जो एक सरदार हो उसका नाम मंडलेश्वर। क्या समझ में आया? भगत जगत को ठगत है। कौन ठगते हैं? आप लोग नाराज मत होना, इसका मतलब और कुछ है। भगत जगत को ठगत है, कोई भक्ति करता है, मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, 1 रुपया चढ़ा करके क्या मांगते हैं, भगवान हमके इसके बदले में बहुत कुछ देना। जब आप गलत ढंग से हम कमाते हैं तो लगता है मन में कि कहीं ये धन न पचे तो थोड़ा इसको शुद्ध कर लें। शुद्ध करने की जगह कहाँ है? बोले आश्रम आदि में जाके थोड़ा भंडारा कर दो, तो अपना धन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का तरीका है। मन में ऐसा आता है कि हमने शुद्ध कर लिया। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगत है संत। हाँ, और संतों को जो ठगत है ताको नाम महंत। समझ में आ गया? अब ये कथा सब रिकॉर्डिंग होती, जो भी सुनते होंगे सोचेंगे क्या बता रहे हैं ये। लेकिन वस्तु स्थिति यही है, मानो ना मानो सबने अपने को कुछ न कुछ मान रखा है। यहीं से मन का खेल शुरू होता है। कोई किसी ने अपने को कुछ मान रखा है, किसी ने अपने को कुछ मान रखा है। वेदांत जब पढ़ने चले तो बोले बस ये मानने का झंझट छोड़ दो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मन कैसा है तो मन का अर्थ ज्ञान भी होता है। मान ज्ञाने, ऐसा धातु आता है संस्कृत व्याकरण में। ज्ञान शब्द के लिए भी मन का प्रयोग होता है। और मन के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा जो शब्द बनता है चंद्र शब्द, तो संस्कृत व्याकरण में इसका भी धातु आया चदि आह्लादे, इससे चंद्र शब्द बनता है आह्लाद अर्थ में। मन की प्रसन्नता, मन प्रसन्न कब होगा? जिस मन से संसार का व्यवहार चलता है इसी मन से हमें परमार्थ की तरफ भी बढ़ना है। भगवान ने मन बनाया है तो इसका कुछ प्रयोजन होगा। और बड़े सुंदर ढंग से इसकी उत्पत्ति हुई है। मन कैसा चाहिए? सूक्ष्म चाहिए ना। मन मोटा हो, बड़ा हो या छोटा हो, व्यवहार में बोला जाता है इसका मन बड़ा छोटा है, तो वहां पर निंदा अर्थ में दिल छोटा है। लेकिन जब मन सूक्ष्म हो, मन पतला हो, वह भगवान को भी प्रिय होता है। ऐसा मन, शिव जी ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। कौन सा चंद्रमा? द्वितीय का चंद्रमा। पूर्णिमा का चंद्रमा करना चाहिए ना सबको। अब पूर्णिमा का चंद्रमा अच्छा लगता है, भगवान ने द्वितीय के चंद्रमा क्यों धारण किया? इसका मतलब ही है मन के स्वामी जो चंद्रमा है, जब द्वितीय का चंद्रमा इतना पतला दिखता है, जिसको शिवजी भी अपने मस्तक पर रखते हैं, यदि मन फैला हो चंद्रमा की तरह पूरा दिखाई दे, ऐसा स्थूल मन भगवान को प्रिय नहीं है। द्वितीय के चंद्र धारण करके यही शिक्षा दे रहे, बता रहे कि जिसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है वह भगवान के मस्तक पर बैठने के योग्य होता है। चदि आह्लादे शब्द से चंद्रमा शब्द की निष्पत्ति हुई। जिस मन से आत्मा और अनात्मा दोनों के संबंध को जोड़ने वाला ये मन है। खूब सुनते हैं आप लोग, मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। आगे क्या कहा? बंध और मोक्ष ये दोनों ही मन के द्वारा होता है। लेकिन बंधाय विषयासक्तम मुक्तियै निर्विषयम मनः। जब यह विषयों में आसक्त होता है तब तो इसके बंधन की प्रतीति होती है इसे, और जब यह निर्विषय वाला होता है, विषय रहित होता है, तब यह अपने आप को मुक्त रूप में जानता है, मानता है। बंधाय विषय आसक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। अब थोड़े हम पंचीकरण प्रक्रिया से चलते हैं, क्योंकि संसार में ही रह करके यहीं पर हम लोग जब वेदांत सुनते हैं या पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए भी जब ये वृत्ति बनती है, कौन सी वृत्ति? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि कहीं मजाक न रह जाए, मजाक न बन जाए, इसके लिए थोड़े सावधानी रखनी है। तदेको वशिष्ठ शिव केवलो हम, वही अहम ब्रह्मास्मि है। बोलने के तरीका अलग अलग है। एक आदमी बोल रहा था कि लोग नारा में बोलते हैं, नारा में सब बोले शिवो हम, मन के भीतर कुर्सी मोहम कुर्सी मोहम। कहां पर क्या, किस चीज में मन लगा हुआ है, बोल क्या रहे, चाह क्या रहे, पता नहीं चलता है। इसलिए को देव यो मन साक्षी, देव कौन है, जो मन के साक्षी है वही देव है। जो एको देव सर्वभूते सुगूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्रुति का वाक्य है कि यो देव को देव यो मन साक्षी, सबके पास अपना अपना मन है, हम बोलते कुछ और है, मन में होता कुछ और है। इनका आपस में कैसा संबंध है, तो इस मन की उत्पत्ति का जब विचार करते हैं तो जिस संसार में रह करके हमें अहम ब्रह्मास्मि बोलना है, पहले तो हर चीज में बोलते थे अहम कर्ता अहम भोक्ता, निषेध करने लगे, कर्ता पिनाहम कार इता पिनाहम भोक्ता पिनाहम भोज इता पिनाहम, न मैं करता हूं न मैं करवाता हूं, न मैं भोग करता हूं न मैं भोगवाता हूं। कई बार लोग बोलते ना, हमें तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन दूसरे को मिल जाए, ये भी इच्छा छोड़ दो, दूसरे को मिल जाए इसका ठेका हमारा नहीं है। जब दूसरे को मिल जाए इच्छा होगी तो वहां भी कहीं न कहीं राग द्वेष होने की संभावना है कि इसको मिल जाए इसको न मिले। जिसके लिए हमारे मन में भाव है कि मिल जाए, उसको जब मिलेगा तो मन में प्रसन्नता होगी, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाएगा तो मन हमारा दुखी होगा। इससे भी ऊपर उठना है, कर्ता पिनाहम न मैं करता हूं, कारयिता पिनाहम न मैं करवाता हूं, भोक्ता पिनाहम न मैं भोग करता हूं, न भोजयिता पिनाहम न मैं भोगवाता हूं। पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से इस मन को हम लोगों ने कैसे कमजोर बना रखा है और इसे कैसे मजबूती प्रदान करना है, इस पर जरा विचार करते हैं। पांच भूतों से पांच विषय बने, सत्व रज और तम तीन गुणों के आधार पर इन्हीं विषयों का विभाजन होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। सत्व गुण से इंद्रियों के द्वारा विषयों का जो उपभोग है, इसी को हम बोलते हैं ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञान होना। रजोगुण से पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा इन्हीं विषयों का विभाजन होता है। मोटे मोटे तौर पर समझिए, शब्द का ज्ञान होता है कान से और शब्द का उच्चारण होता है वाणी से। वाणी ने बोला, कान ने सुना और मन में क्या अनुभव हुआ, मन में आप उस शब्द के प्रति, शब्द ज्ञान के प्रति लगाव है या शब्द से होने वाला सुख दुख के प्रति लगाव है, क्योंकि आप साधना कर रहे हो, साधना के मार्ग में चल रहे, विचार करना है, क्योंकि जीवन तो इन्हीं चीजों में चल रहा है, यहीं से हमें ऊपर उठना, अध्यात्म ज्ञान की बात है। तो शब्द वाणी से उच्चरित हुआ, वाणी रजोगुण का कार्य है, शब्द सत्वगुण है और वाणी से जो उच्चरित हो रहा है, ये वाणी कौन है, कर्मेंद्रिय है ना, कर्मेंद्रिय रजोगुण का कार्य है। और उस शब्द के ज्ञान कान के माध्यम से जब मन में पहुंचा, तो शब्द ज्ञान के प्रति हमारा लगाव है या उस शब्द से उत्पन्न होने वाला सुख दुख के प्रति लगाव है। हर चीज में लेना है, अभी एक चीज को पहले समझिए तो आगे सारे विषयों में यही बातें आएगी। क्या कहेंगे, ये उत्तर आपकी तरफ से मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये चिंतन करने का तरीका है। शब्द गया कान से मन में आया और बोला कि इसने मेरा अपमान किया, ये हुआ दुख। इसने मेरा सम्मान किया, ये हुआ सुख। लेकिन क्या इतना हम चिंतन करने का समय निकाल पाते हैं? तुरंत तुरंत काम होता है, इतने जल्दी जल्दी काम होता है, समझ में नहीं आता। और उसी के तुरंत हम प्रतिक्रिया भी देते हैं, इसने मेरा अपमान किया, या उसी समय हम जवाब भी दे देते हैं। अब तो हमें थोड़ा विचार करना है कि मान ज्ञाने, जो मन ज्ञान शब्द में प्रयुक्त होता है, मन को शीतल बनाना है, क्योंकि पांच भूतों के मिले हुए सत्गुण से मन उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? पांच भूतों के मिले हुए सत्गुण से मन की उत्पत्ति हुई है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी का भेद है सब। और इन्हीं पांच भूतों के मिले हुए रजोगुण से कौन उत्पन्न हुआ? प्राण। प्राण का काम क्या है? तो प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। ये मन किससे बंधा हुआ है? प्राण से। जब परमेश्वर समष्टि रूप से जगत को उत्पन्न करने चलते हैं, तो समष्टि रूप में क्या रूप धारण करते हैं? उसी का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों रहती है। और जो मन के समष्टि है, एक तरह से समझ लीजिए, जागृत अवस्था में विश्व व्यष्टि है और विराट समष्टि है, स्वप्न अवस्था में तेजस व्यष्टि है और हिरण्यगर्भ समष्टि है। पूरा जो ये संसार चल रहा है मानसिक कल्पना से, प्रत्येक व्यक्ति के मन के हिसाब से सबके लिए संसार अलग अलग है। एक ही समय में सबके मन का भाव देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा। कोई आता है बंबई में, बोलता बड़ा अच्छा लगता है, कोई बोलता हमें अच्छा नहीं लगता। भोजन कर रहे, एक बोलता है भोजन बहुत अच्छा है, एक बोलता हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इससे पता चलता है ये व्यष्टिवाद, व्यक्तिवाद के आधार पर सबके सुख और दुख का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न है। पांच भूतों के मिले हुए रजोगुण से उत्पन्न हुआ प्राण, और इधर हो गया मन। प्राण का फिर पांच भेद हो जाएंगे, प्राण अपान व्यान उदान समान। अब आ जाइए शब्द के बाद स्पर्श। स्पर्श छूने का काम किससे होगा? हाथ से। ये कर्मेंद्रिय है, और जब भी छूना होगा तो हाथ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं कि हाथ में कुछ रखा है तो बोले बांह से थोड़ा छू के देख लो। कर सकते हैं, ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि त्वचा तो यहां भी है, लेकिन प्रायः हाथ में उठा करके ही हम उसको देखते हैं, उलट पलट के, अथवा ठंडा है, गर्म है, कोमल है, कठोर है। ये हाथ जो है कर्मेंद्रिय है, और इससे त्वचा के द्वारा छू करके जो ज्ञान हुआ स्पर्श का, ये सत्गुण का कार्य, ये ज्ञान है। इस ज्ञान में भी सुख और दुख दोनों का अनुभव होगा, और ये किसका काम है? मन का। बोलते हैं ना, यदि व्यक्ति को जीवन मुक्ति का आनंद लेना हो तो पांच विषय और सुख दुख से ऊपर उड़ जाओ, हो गया आपका मन का धंधा ही समाप्त हो गया। पांच विषय और सुख दुख, क्योंकि पांचों विषय का व्यवहार इंद्रियों से होगा, और उससे कभी सुख का अनुभव कभी दुख का अनुभव होता है, और वो है करने वाला मन। इसमें भी हम अभी चिंतन कर रहे हैं कि जो भी हमें अनुभव हुआ सुख रूप में अथवा दुख रूप में, वो करने वाला इंद्रियों से जो अनुभव हुआ मन में, मन जाने हमें इससे क्या लेना देना। घड़े का ज्ञान हुआ आंख से, कहीं रखा था घड़ा, बोले थोड़ा चल करके जाओ, वहां पहुंचो तो घड़ा दिखाई देगा। कर्मेंद्रिय का काम हो गया पैरों से, चल करके गए, ये हो गए वाक पाणी पाद। इसका मतलब है तेज से किसकी उत्पत्ति होती है, तेज के रजो गुण से पैरी होगा ना, सत्व गुण से नेत्र और ये हो गए पैर, और इससे ज्ञान हुआ रूप का। जिस घट रूप का ज्ञान हुआ, घट है विषय और घट का जो ज्ञान है यह है चिंतन प्रणाली। हमें घट के ज्ञान करने की सामर्थ्य प्राप्त हुई तब तो आप अपने मन को मजबूती प्रदान कर रहे हो, और यदि घट विषय के प्रति आसक्ति हुई तो इससे मन कमजोर होगा। जरा ध्यान दीजिए, ये बात कहीं ऊपर ऊपर तो नहीं जा रही है ना, कुछ समझ में आ रहा होगा। घट का ज्ञान हुआ, भगवान की कृपा से क्या कहना चाहिए कि हे प्रभु आपने हमें घड़े जानने की शक्ति प्रदान की, आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन उस घट विषय के प्रति जो आसक्ति हुई इससे हमारा मन फिर कमजोर हो जाता है। आसक्ति का मतलब क्या है ये भी विचार करो। घड़े का स्वरूप बाहर है, घड़े का ज्ञान के द्वारा आपने उसका संस्कार मन में बनाया। जो जो विषय ज्ञात हो जाए और ज्ञात होकर के अपनी गंध छोड़ जाए, संस्कृत में कई जगह ये वासना है ना, वासना, ये वासना का मतलब सुगंधी होते। जो अपनी गंध मन में छोड़ जाए, जो बस जाए, वही वासना है।